बंदूक लेके फिर रहा है, तो फौरन यहां पे आया गया था, इसको शटडाउन किया गया था। इसके पास का जो स्कूल है जॉन फ्रेजर सेकेंडरी स्कूल, उसको भी जो है होल्ड पे कर दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला जी कि वो जो गन है वो नकली है, वो कोई असली गन नहीं है। अब ये नहीं पुलिस की अभी तक इतला आई है कि जी ये जो है वो किसी को उन्होंने अरेस्ट किया है या नहीं किया, वो अरेस्ट करने का कुछ भी नहीं आया इसके अंदर। लेकिन उन्होंने कहा जी कि इंजरीज कोई भी इसके अंदर नहीं हुई हैं, और ये जो स्टूडेंट था इनको किसको पकड़ा कौन था वो उसका कुछ पता नहीं है, डिटेल्स नहीं है। और अब ये स्कूल जो है जिनको के होल्ड पे रखा गया था इनको खोल दिया अब। लेकिन
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो
जी।
अच्छा जनाब, आज जो कनेडियन वैक्स इंजरी सपोर्ट प्रोग्राम है वो कहते हैं कि हमको ये जो प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस किया था दिसंबर 2020 में, और फिर इसको जो है इन्होंने किया था लॉन्च कर दिया था जून 2021 में, उसके अंदर इन्होंने कह रहे हैं जी कि हमारे पास 8 जो हैं वो क्लेम्स अभी तक जो हैं अप्रूव किए गए हैं, हालांकि इनके पास 10,000 केसेस आए थे अप्रूवल के लिए। यहां पर जो हेल्थ कैनेडा ने इनको ये जो था ये अप्रूव किया था ये प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा जो है वो कह रही है कि अभी तक ये जो सारे केसेस हैं उनमें से 774 उन तक पहुंचे हैं, 654 जो हैं उनको एडमिसिबल एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के लिए भेजा है, 71 को इनएडमिसिबल कहा है, 49 जो हैं उनका पेंडिंग है रिव्यू, और इस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये जो रिव्यू में चीजें चली जाती हैं ना, इन्हीं के अंदर फिर वो पेंडिंग सारा कुछ सिस्टम चलता रहता है। लेकिन आज जिस चीज ने आंखें खोली वो ये थी कि 10,000 क्लेम्स आए और उसमें से 8 का अप्रूवल गया।
सही।
तो आई मीन किस पेस पे भाई आप काम कर रहे हो, किस पेस पे आप काम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस बैठ कर तंबाकू रोड
गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की जॉब्स। यानी हम अपने मुल्कों को इतना बातें बताते हैं, आपका तो उनसे भी वही बुरा हाल है ना। तो ये ऐसे। अच्छा जी, एक और आज जो खबर आई है विच कैन बी वेरी गुड, आपको पता ही हम आपको बहुत अरसे से हर दूसरे तीसरे महीने बताते ही हैं ओपीओइड का जो क्राइसिस आ जाता है, तो उसमें जो है बच्चे कभी स्कूल में भी होते हैं, ओवरडोज आ जाती है और उनको बचाया नहीं जा सकता है, इधर उधर सड़कों पे होते हैं तब तो बिल्कुल ही नहीं बचाया जा सकता, लेकिन एटलीस्ट अगर वो स्कूल के अंदर हैं तो उनको बचाया जा सकता है। ये अब एडवांस कोरोनरी ट्रीटमेंट फाउंडेशन जो है इसने सजेस्ट किया था कि भाई बच्चों को जो ओपीओइड अगर उनको ऐसे ओवरडोज हो जाए तो उसकी जान कैसे बचाएंगे। तो अब थाउजेंड्स ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं कनाडा के अंदर उनको अब बताया जाएगा कि आपने ये नेलोक्सोन जो है ये कैसे एडमिनिस्टर करना है, और ये जो ओवरडोज है इसके इफेक्ट्स को आपने रिवर्स कैसे करना है, और CPR भी अब प्रॉपरली और ज्यादा बच्चों को बताया जाएगा। और ये जो चीजें हैं ये सारी फॉर फ्री ऑफर की जाएंगी स्कूलों के अंदर, फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्यूबेक, अल्बर्टा, ऑन्टेरियो और BC में, और फिर उसके बाद जो है दूसरे सूबों में भी ये फैलाया जाएगा।
फॉर सम रीजन आई डोंट एग्री विद दिस, कि जैसे कि एक जमाना था कि जब इन्होंने फ्री नीडल्स दे दी थी कि लोग नीडल्स यूज करते हैं तो लीजिए जी फ्री नीडल्स दे रहे हैं, तो यू आर इनकरेजिंग पीपल मोर टू यूज दिस व्हेन यू गेट फ्री, समबडी वांट्स टू ट्राई इट। तो ये भी जो है ना ये आप उनको एजुकेट करें कि ये दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू।
नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर तुम कर भी रहे हो ना तो तुम्हें हम बचा लेंगे, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं।
तो लोग कहेंगे यार मैं
स्कूल में बचा लेंगे,
कोई बात नहीं,
अब तो ट्रेनिंग दे दी है बच्चों को तो अब मुझे बचा लो।
आई थिंक दे शुड गिव देम मोर एजुकेशन हाउ
ना करो
ये हार्मफुल है ये।
बिल्कुल ऐसे, यानी कि अगर तुम स्कूल में भी थे फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की छुट्टी हो गई और तुम बाहर निकल गए, फिर तुम्हें कौन बचाएगा?
एग्जैक्टली,
है ना। तो ऐसे। अच्छा जी, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैनेडा जो है आज उसने बहुत बुरा मनाया, उसकी वजह यह है कि उनके दो जो ऑर्गेनाइजेशन के बंदे थे उनको अरेस्ट किया गया था, और ये जो प्रेसिडेंट हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के तजिंदर सिंह सिद्धू जो हैं वो कह रहे हैं कि आपको ये जो कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इनको इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने गलत रॉन्गफुल इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी और अरेस्ट किया। अच्छा, ये क्या हो रहा था कि ये एक निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, और बड़ा ही ये मतलब है पीसफुल था ये। वो कह रहे हैं कि ये रिमेम्बरेंस रैली निकाल रहे थे हम विक्टिम्स ऑफ 1984 मैसेकर ऑफ सिक्स इन इंडिया में, तो उसके लिए जो है ये इसमें किसी ने बता दिया कि जी बॉम्ब का स्केयर है इसके अंदर, तो उसमें पता नहीं किसने पॉइंट आउट किया, तो दो जो इनके मेंबर्स थे उनको पकड़ के ले गए क्योंकि ये कर रहे थे उसके पास जो है नियर पार्लियामेंट हिल कर रहे थे तो किसी ने कहा कि ओ हो, तो चाहे दो लोगों को जिनको पिन पॉइंट किया गया उनको पकड़ के ले गए, तो वो बाद में पता चला कि वो बिल्कुल गलत उनको पकड़ा था, उनके पास कोई ना बॉम्ब्स थे ना कोई चीज थी। तो अब वो बड़े भड़के हुए हैं वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन वाले, वो कह रहे हैं कि ये किसने पॉइंट आउट किया, किसने इनके बारे में ऐसी गलत बात की, वो आप जो है फाइंड आउट करें। तो ये अब जी देखेंगे कि क्या यहां पे होता है। आज जनाब एक ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड का एक रिव्यू चल रहा था एक वाक्य के ऊपर, उनकी आज एक रिपोर्ट आई है दो कनेडियन एयरलाइंस के बारे में कि उनका कोलिजन होने वाला था और होते होते बच गया, अल्लाह ने उनको बचा।
वेरी लकी।
हाँ वेरी लकी। अच्छा उसमें वो बता रहे हैं कि एक जी बोइंग जो था 777 था, और ये जो था इसको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि भाई तुम लाइन अप करो, ये हैलिफैक्स जा रहा था, इसके अंदर 345 पैसेंजर्स थे, 14 क्रू मेंबर्स था, और जबकि दूसरा जो एयर कनाडा का एम्ब्रॉयडर 190 था वो रनवे 06L पे खड़ा हुआ था उड़ने के लिए, तो अभी वो उड़ा नहीं था, उसने अभी अपनी रेस पकड़ी थी और इसको कहा जी कि तुम आके लाइन अप कर लो, तो इनका आपस में कोलिजन हो सकता था। लेकिन फिर वो उसको बचा लिया गया, लेकिन वो जो है वो जो टावर था वो जो एयर ट्रैफिक टावर होता है उनको ये पता नहीं चला और उन्होंने ये गलत मैसेज दिया। तो ये अब इन्होंने जो रिव्यू बिठाया था उस पर इन्होंने कहा जी कि अब देखना पड़ेगा कि कौन इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल थे। बहरहाल उस वक्त वो जो कैप्टन्स थे जो पायलट्स बैठे हुए थे उन्होंने भी देख लिया और फिर कुछ लोगों को वहां पर भी होश आ गई, तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं आप रुक जाएं आज लास्ट मिनट पे, वरना ऐसे बिल्कुल सामने मुंह के ऊपर आके
हेड ऑन कोलिजन होता,
हेड ऑन कोलिजन होता, और ये देखें आप कितने बंदे उसके अंदर मर जाते हैं। उसके अंदर जो कैनेडियन एम्ब्रॉयडर था उसके अंदर 190 लोग थे और इसके अंदर जो थे 345 पैसेंजर्स थे, तो ऐसे हो सकता था। आज मॉस्को ने जी ब्लैकलिस्ट किया है बहुत सारे यूके के ऑफिशियल्स को, इसके अंदर मीडिया के बहुत सारे बंदे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के बंदे हैं, तो कुछ लोग जिनको के इन्होंने किया है उनकी हम आपको भी तस्वीरें भी दिखाएंगे। और रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि ये सारे जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे ये सिर्फ वन साइडेड स्टोरीज जो हैं ये पेंट कर रहे थे और बता रहे थे, और इसके अंदर उन्होंने जो है वो सिर्फ ये कह रहे थे कि रशिया जुल्म कर रहा है, रशिया अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ की स्टोरियां जो हैं वो ये नहीं कर रहे थे, बता नहीं रहे थे। तो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं इसमें बहुत सारे, और फिर इसके अंदर जो है ये शॉन वॉकर ऑफ द कैनेडियन ऑफ द गार्डियन, ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ये हैं गिडियन रैक्चमैन हैं द फाइनेंशियल टाइम्स के, और मार्क गैलियोटी, यानी कि बहुत सारे टॉप जर्नलिस्ट जो हैं उन सबको भी आज इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया है।
इससे पहले सीबीसी के भी
सीबीसी के भी कर सक चुके हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इन्होंने कहा जी कि ये सारे गलत जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है जी उसने आज एक स्टेटमेंट जारी की और उसके मुताबिक उनको कहा गया कि जैसे ये सारे मीडिया वाले हमारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं तो इट्स नॉट ऑल ट्रू, हमारे साइड की भी आपको स्टोरी सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि यूक्रेनियन फाइटर्स जो हैं इनको हमने कहा वो जो एजॉट केमिकल प्लांट जो है उसमें हमने उनके लिए जो है वो विच इज इन द टाउन ऑफ सेवरेडोस्क उनको हमने कहा है कि आप अगर सरेंडर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा और आपको जो है वो कहते हैं जी हमने ये एक तो ये इनके साथ किया कि अगर ये क्वाइटली सरेंडर कर दें तो हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, छोड़ देंगे, और दूसरा ये है वो कह रहे हैं जी कि हमने ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है वो भी हम अब कल से खोल रहे हैं जिसके के अंदर अगर कोई लोग छोड़ के यूक्रेन जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, सिविलियंस स्पेशली जो है वो अगर जाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि ये साइड की स्टोरीज जो है हमारी ये भी मीडिया वालों को दिखाना चाहिए। आज यूके के अंदर काफी गर्मा गर्म दिन रहा क्योंकि एक नया वो लॉ लेकर आए हैं और ये उन्होंने डील की थी रवांडा की गवर्नमेंट के साथ, उसके अंडर कुछ लोगों को जो असाइलम सीकर्स थे जो कि आए थे इंग्लैंड के अंदर उनको भी ये वापस रेफ्यूजीज उनको ये लोग वापस भेज रहे हैं। वो कहते हैं जी कि एक प्लेन चार्टर कराया गया है और इन सबको यूके से रवांडा लेके जाया लेके जाएंगे क्योंकि इनकी जो रवांडा की गवर्नमेंट के साथ एक बड़ी कंट्रोवर्शियल डील हुई थी 120 मिलियन पाउंड्स की। वो कहते हैं जी हम आपके बंदे दे रहे हैं और पैसे भी आपको दे रहे हैं, इनको अपने पास रखो क्योंकि वो कहते हैं हम रोकना चाहते हैं। यूके होम ऑफिस जो है उसने कहा कि ये जो हमने डील अप्रैल के अंदर साइन की थी इसका मेन मकसद यह है कि ये जो बहुत डेंजरस ट्रैवल करते हैं और अननेसेसरी जर्नीज करते हैं स्मॉल बोट्स में जिसमें कि बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं और लाइव सेव नहीं की जा सकती तो उसको हम रोकने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें जो अब एवर अनवर सुलेमान है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रिफ्यूजी काउंसिल वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा ये गवर्नमेंट के क्रूअल और नेस्टी डिसीजन से बहुत ही मैं उदास हूं और मुझे लगता है कि ये इनका डिसीजन जो है ठीक नहीं है। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी चीफ जो है फिलिपा ग्रैंडी उन्होंने भी कहा है कि ये यूके जो है, बजाय इसके कि वो बेचारे असाइलम सीकर इनके पास अपनी हिफाजत के लिए आए थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से रवांडा के अंदर जा दे रहे हैं। तो कोई इसमें वो नहीं है कि अगर ये वहां पे लोग पहुंचे तो इनको मार दिया जाए वहां पे, तो ये अपनी शिफ्ट कर रहे हैं। इसी तरह
हमारे जो प्रिंस चार्ल्स हैं,
उन्होंने बड़ा बुरा मनाया है,
अब उनको चुप करा दिया गया
है, मगर ये फेल्ट बैड अबाउट इट प्राइवेटली। हाँ, उसको पब्लिक नहीं वो करना चाहते। अच्छा, जस्टिन वेल्बी जो है आर्च बिशप ऑफ कंटरबरी जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये चीज जो आपका ये जो डिसीजन है, इसमें तो बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस हैं कि भाई ह्यूमन लाइव्स मैटर नहीं करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर करती हैं तो उनको इधर हिफाजत दो, तुम उधर भेज रहे हो मरने के लिए उनको, यानी कि उनका ये मतलब था। लेकिन रुवांडन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है विंसेंट बिरूटा, उन्होंने कहा है जी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी ये जो सारी बातें हैं कि हम रेफ्यूजीज को मार देंगे, कुछ हो जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स एंड एवरीथिंग, सो वी विल केटर फॉर देम। अब कितना केटर करेंगे वो तो अब आने वाले जो हैं वो दिन ही बता सकते हैं। मॉडर्ना जो है जी, उसके बारे में अब बहुत सारी जो हैं वो चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। ये जो है एक डेटा जो है आज प्रेजेंट किया है वैक्सीन सेफ्टी डेटा लाइन सिस्टम्स ने, और उसने कहा है कि वैक्सीन जो मॉडर्ना की है वो हार्ट इन्फ्लेमेशन जो है बहुत ज्यादा कर रही है कंपेयर टू फाइजर बायोनटेक का जो शॉट्स हैं। वो कहते हैं जी कि हमने फाइंड आउट किया है कि ये जो इंसिडेंस है दिस इज 97.3 केसेस पर मिलियन इन मेल्स एज बिटवीन 18 to 39, और ये बढ़ जाती हैं सेकेंड डोज के बाद, जबकि जो फाइजर बायोनटेक की जो डोजेज हैं दैट इज ओनली 81.7 केसेस पर मिलियन। तो अब ये इसके ऊपर जो है फिर से मॉडर्ना के ऊपर किनसीर ना गए, तभी मजिद भाई मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे तो मॉडर्ना लगी थी, मेरा कोई जिस्म सही फंक्शन नहीं कर रहा।
आपको मॉडर्ना लगी?
दोनों मुझे शॉट्स थी, बल्कि तीनों मुझे मॉडर्ना लगी हैं।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट से लग,
हाँ डिफरेंट लग रही है ना, तो ये सही मेरे हालात कुछ सही नहीं है, इसीलिए मैं बेकी बेकी बातें कर रही हूँ आजकल, इसीलिए मैं गाने गाती हूँ ना यहाँ पे अपने कमरे में बैठ के जरा सा झूम लूँ मैं। तो माजिद भाई मुझे कहते हैं अरे ना अरे ना अरे ना, ये मॉडर्ना का आंसर है, मुझे पता चले है जी।
हाँ मैं सोच रहा था क्या मजा है,
पता चला,
पता लगा,
आप मुझे कहते रहते हैं कमरे से अरे ना अरे ना अरे ना। तो जनाब ये हुआ है। अच्छा जी जितने अधिक होती उतने अंक होती, आपने सुना है? अब आमिर को तो समझ नहीं आएगा लेकिन आपको समझ आ गया होगा।
हाँ जी
सारी जिंदगी हमने एमबीएस को जो है बातें सुनाई, केएसए को जो है बड़ा वो सुनाई बातें, ये खराब है, इनके मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, बड़ी खराब किंगडम है, और इनके खिलाफ हम मोर्चे निकालेंगे और सख्तियां करेंगे, बाइडेन साहब जब अपने इलेक्शन ट्रेल पे थे, हैं जी
सही।
मैं इनको सीधा कर दूंगा और ये बड़े खराब लोग हैं, और ये हूं बाइडेन साहब, हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मिडल ईस्ट के टूर पे जा रहे हैं,
हाँ जी
मिडल ईस्ट के टूर पे जा रहे हैं, और वहां पे मिलेंगे ये लोग इजरायली लीडरशिप के साथ, जाहिर है, लेकिन उसी ट्रिप में सेम ट्रिप में सऊदी अरब भी जाएंगे।
ओके,
ठीक है जी, सऊदी अरेबिया सिर्फ नहीं जाएंगे बल्कि जो बड़ा इसके अंदर जो बॉम्ब फड़ा है आज व्हाइट हाउस ने, वो बॉम्ब ये फड़ा है, ये जो इनका जो टूर है ये कल से शुरू हुआ है, तो ये 13th से लेकर 16th तक, तो इसके अंदर ये है कि ये एमबीएस से भी मिलेंगे बाइडेन साहब। अच्छा जी, बाइडन साहब जो हैं जिस वक्त इलेक्शन ट्रेल पे थे तो आपको इनके अपने खुद के वर्ड्स अगर याद हों, जिस वक्त जमाल खशोगजी को मारा गया था, आपको पता ही अंकरा में वहां पे ये गए थे अपने वो नहीं सॉरी अस्तंबोल में जो इनकी वो जो सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी है उसमें गए थे अपना वो वीजा लेने के लिए, तो फिर उधर उनको अलेजली वहां पे मार दिया गया था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा जी हमने नहीं मारा, कोई रोग एजेंट्स थे उन्होंने मारा जब वो बाहर जा रहा था, बहरहाल खैर उन्होंने कहा जी कि नहीं ठीक है हमारे कंपाउंड में भी मारा है, बहरहाल वी वर नॉट, और इन्होंने अमेरिका ने कंप्लेन की अलेज किया था कि एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान जो है उसके ऑर्डर्स पे इसको मारा गया, उसने ऑर्डर्स दिए थे, ये जो इनकी इंटेलिजेंस थी अमेरिकन इंटेलिजेंस वो ये कह रही थी, जबकि मोहम्मद बिन सलमान बार बार कह रहा था मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो आदमी उस वक्त जो है वो इस्तंबुल की उसमें एम्बेसी के अंदर था सऊदी एम्बेसी में। तो बाइडन साहब खुद कहते रहे हैं कि इनके साथ बड़ी सख्ती के साथ जो है वो मामले निपटाने की हम जरूरत है और हम पेश आएंगे, अब ना सिर्फ ये कि वो सऊदीया जा रहे हैं बल्कि एमबीएस से भी मिलेंगे।
वेरी गुड,
व्हाट इज दिस मजद भाई,
दोस्ती का हाथ बढ़ाना है।
अच्छा अच्छा, प्यार दिखा रहे हैं,
प्यार दिखा
रहे हैं। अच्छा, प्यार भी और पीआर भी बढ़ा रहे हैं,
मतलब कहने का मकसद यही है,
ऑयल चाहिए ना, आयल चाहिए इनको, अरब आयल तो इसलिए ये मत्ते जो है जी, अब ये कितने दिन ये हनीमून का पीरियड रहेगा, ये तो आपको खुद ही पता है कि अंकल सैम की मत्ते कैसी होती हैं, जैसे कभी पाकिस्तान के साथ भी बड़ी थी।
हम 1.5 मिनट का कमर्शियल स्पॉट लेते हैं, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे।
बाबास पिज्जा एंड विंग्स, हॉट एंड फ्रेश पिज्जा की वैरायटी, या अपनी पसंद का पिज्जा, चिकन चर्रा, क्रिस्पी चिकन, तंदूरी चिकन, चिकन विंग और मजेदार फ्राइज, पोटैटो वेजेस, पुटीन, ऑनियन रिंग, गार्लिक ब्रेड, पेंजोस और बहुत कुछ। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए विजिट कीजिए babaspizza.ca या कॉल करें मॉल्टन लोकेशन 9056737786 या ब्रैम्पटन लोकेशन 9057906786। बाबास पिज्जा एंड विंग्स।
मेसमराइज ऑप्टिकल, सनग्लासेस, आई ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज।
Doctor on site, get your eyesight checked. Mesmerize Optical,
Markham and Shepherd, 1789 Markham Road, 416-335-0786.
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल, कमर्शियल मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं। कॉल हैरी सॉन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
वेलकम बैक अगेन। एंड साहब जून 26 को आप मार्क कर लें, जून 26 को जनाब खबर हार जो पाकिस्तान का मशहूर प्रोग्राम है, टीवी प्रोग्राम, आफ्ताब इकबाल साहब उसके रूह रवां और 16 लोगों की एक टीम पाकिस्तान से यहां आ रही है, एक बड़ा रंगा रंग प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे जून 26 को 5 बजे शाम को। डिनर के साथ ये प्रोग्राम है कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर इन ब्रैम्पटन। टिकट्स एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 416-526-6800, 416-526-6800 इनका फोन नंबर है जी।
अच्छा जी, ये बड़ी प्यारी खबर है मजद भाई, ये इतनी क्यूट खबर थी तो मैंने कहा इसको जरूर भाई शामिल करना चाहिए, क्योंकि आज कुछ आगे जाके दिल दुखाने वाली खबरें हैं। एसोसिएटेड प्रेस की आज ये न्यूज है और इसमें ये है कि एक ये ना अमेरिका के अंदर ब्रॉन्क्स जू है,
हाँ जी,
उसके अंदर एक हाथी है, तो जो कुछ एनिमल लवर्स हैं, मतलब बंदियां तो प्यार आ ही नहीं रहा ना किसी नु, हाथी तो प्यार आ गया है, तो उसको कहा जी इसको छोड़ दो। अब जू वालों ने कहा कैसे छोड़ दें भाई, है ये तो जू में है,
पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया था,
हाँ छोड़ दिया था, लेकिन ये बड़े जालम है, ये कहते हैं हम नहीं छोड़ते, ये जू है इसके अंदर ये हाथी है। अच्छा इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने वहां पे जो कोर्ट ऑफ अपील्स है न्यूयॉर्क में, वहां पे इन्होंने जज को कहा कि तुम हेबियस कॉर्पस प्रोसीडिंग शुरू करो इसके ऊपर। अच्छा हेबियस कॉर्पस जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उस सिलसिले में होती हैं जिस वक्त कोई इंसान ये कहता है, ह्यूमन पर्सन कहता है कि जी मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई है या मुझे जोर जबरदस्ती में कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, तो ये जिस वक्त केस उधर जज के पास गया, चीफ जज जेनेट डिफ्योर है, उन्होंने ये केस रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा नंबर वन अकॉर्डिंग टू द लॉ ये ह्यूमन नहीं है,
हाँ।
वैसे तो ये बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े खूबसूरत एनिमल्स हैं, वी ऑल लव देम, लेकिन ये ह्यूमन नहीं है,
हाँ।
और सबसे बड़ी बात है कि हेबियस कॉर्पस जो होता है इंसान यूज कर सकता है अपने लिए, है इंसानों के लिए ये लॉ है कि उसको अगर जबरदस्ती से आपने कन्फाइनमेंट में लिखा है, उसकी लिबर्टीज के ऊपर आपने रोक लगाई है, तो ये उसको करता है। तो ये जो है हैप्पी, इसका नाम है, इसका नाम है हैप्पी जी, इस एलिफेंट का नाम, तो ये जो हैप्पी है मुझे लगता है सिख है ये, हैं हैप्पी, तो ये कहता है जी कि ये अप्लाई नहीं होता है नॉन ह्यूमन को जैसे कि एक एनिमल, इसलिए जो है इसको जू में ही रखा जाएगा। और ब्रॉन्क्स जू वाले जो थे उन्होंने तो पहले ही कहा था कि हमने इसको कोई इलीगली इधर इम्प्रिजन नहीं किया हुआ, ये यहां पे जो है इसके अंदर जू के अंदर फ्रीली घूम फिर सकता है, इसके लिए काफी हमने एरिया रखा हुआ है, ठीक है जी। इंडिया के अंदर जी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने आज कहा है कि ये जो मुसलमानों के खिलाफ आप क्रैक डाउन कर रहे हैं इसको इमीडिएटली आप रोकें, उसकी वजह ये है कि ये जो अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सैडली शान में जो गुस्ताखी कुछ दो बीजेपी के ऑफिशियल्स ने की थी, उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं. इन डेमोन्स्ट्रेशंस के अंदर जो दो लोगों की डेथ हो गई है और सैकड़ों ही लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है. एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो हेड हैं आकर पाटेल, वो कह रहे हैं कि ये जो अथॉरिटीज हैं विशियसली क्रैक डाउन कर रही हैं मुसलमानों को और ये लॉज उनके लिए सिलेक्टिवली चला रही हैं और ये आर्बिट्री जो डिटेंशन है और प्यूनिटिव हाउस डिमोलिशंस हैं ये बिल्कुल इंडिया की कमिटमेंट अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो है उसके अगेंस्ट है. यूपी के अंदर तकरीबन 300 लोग जो हैं लास्ट वीक उनको इन रैलीज के अंदर से जो है अरेस्ट किया गया था. तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इमीडिएटली इनकी डिटेंशन खत्म करके इनको रिलीज किया जाए और ये जो अरेस्ट्स हैं इनको भी रोका जाए और ये जो बुलडोज किए जा रहे हैं उनके घर इनको भी एक सेकंड में रोका जाए. तो अब देखेंगे जी क्या वहां पे होएगा. इसी तरह जमीयत उलमाए हिंद जो है उसने भी दो फ्रेश प्लीज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में डाली हैं और वो कह रहे हैं जी कि आपकी जो डिमोलिशंस करते जा रहे हैं यूपी की गवर्नमेंट इसके ऊपर आप स्टे लें क्योंकि इनको रोकें. ये उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये प्रज्ञा राज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहां पे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर जावेद मोहम्मद का घर उन्होंने डिमोलिश किया, हालांकि वो घर जो है वो उनका उनके नाम पे था भी नहीं, उनकी बीवी के नाम पे था. एज अ रिजल्ट उसके बीवी बच्चे जो है सड़क पे बैठे हैं और भी बहुत सारे इस तरह के लोग मुसलमान जो हैं फैमिलीज वो सड़कों पर बैठी हैं. तो इन्होंने कहा है कि फौरन ये जो बुलडोज कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है घरों को इसको रोका जाए. तो कोर्ट को कहा है कि जी आपकी फौरन इसके ऊपर अटेंशन चाहिए, मुसलमानों के घरों को बुलडोज करना बंद करना चाहिए. एक क्लिप आया है 15 सेकंड का और आप देखें ये कितने खतरनाक है सोशल मीडिया के ऊपर. इसको कहा जा रहा है जिहादीज ऑफ कानपुर, जिसमें के देखा जा रहा है कि दो ग्रुप्स हैं और वो डंडे सोटे लेके और बंदूकें लेके खड़े हुए हैं और ये बहुत ज्यादा ट्विटर के ऊपर वायरल हुआ हुआ है और उनको कहा जा रहा है ये जहादी हैं ये कानपुर के. और ये लोग जो भी रिसेंटली जो कानपुर के अंदर ये जो सारे जलसे जुलूस निकले थे ये इसके अंदर वायलेंस फैला रहे हैं. अच्छा जी, वायलेंस फैला रहे हैं. और ये इन्होंने कहा जी ये जून 10 को एक लड़के ने ट्विटर यूजर ने ये कहा और उन्होंने कहा कि ये देखो मुसलमान कैसे डिस्क्रिमिनेट जो है फायरिंग कर रहे हैं. तो उसके ऊपर पुलिस जो है वो सिर्फ उसने टीयर गैस छोड़ी और कुछ भी नहीं किया. अच्छा, अब जब मीडिया ने फैक्ट चेक किए, एक दो जो अब आजाद मीडिया हिंदुस्तान में रह गया उसने जब किए, तो उन्होंने कहा जी कि ये एक साल पुरानी वीडियो है और ये वहां पे धौदरा थाना पुलिस स्टेशन के इलाके में बरेली के अंदर हुई थी ये और इसमें दो मुसलमान ही शामिल थे. एक का नाम था जलीश अहमद और दूसरे का नाम था सलीम कुरैशी. हुआ क्या कि जलीश अहमद ने सलीम कुरैशी को कहा कि तुम उसको एक दुकान चाहिए थी अपनी मीट शॉप चलाने के लिए, बुचरी अपने चलाने के लिए. तो जलीश ने इसको सलीम को कहा कि तुम यहां पे ये मीट बेचो, मैं तुम्हें ये अपनी शॉप देता हूं लेकिन तुमने बहुत फेयरली इसको चलाना है, प्राइसेस ज्यादा नहीं करनी. सलीम ने क्या किया कि लालच में आके 150 रुपीज इंडियन पर किलो बेचता था गोश्त, उसको 250 रुपीज पर किलो कर दिया, जिसके ऊपर जलीश जो है वो भड़क गया. उसने कहा नहीं, तुमने मेरे से वादा किया था कि यू विल बी फेयर टू पीपल, तो तुम मेरी दुकान जो है वो खाली करो. जब उसने खाली नहीं की तो उसके साथ हाथापाई हुई, वो मारपीट जब हुई तो फिर वो जो सलीम की जो फैमिली के लोग थे उन्होंने फिर हवा में गोलियां चलाई. तो किस्सा यह था कि उसको जोड़ दिया गया कानपुर के ऊपर ये जो अब आजकल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और जहादी उसको कह दिया गया और कहा गया जी कि ये मुसलमान सारी जो हैं ये राइट्स कर रहे हैं और ये फैला रहे हैं, मुश्किलें फैला रहे हैं यहां पे. तो ये ऐसे एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो है जी उसकी आज एक रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो बेतहाशा खराब हो गई है और उन्होंने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कहा है कि अगर आपने इसके ऊपर काम ना किया तो आने वाली जनरेशंस बहुत ज्यादा सफर करेंगी. और वो कह रहे हैं कि आपको द फर्स्ट थिंग इज टू हैव अ वेरी एम्बिशियस एयर क्वालिटी प्रोग्राम और ताकि आप इनके जो एयर की क्वालिटी है और ये स्टैंडर्ड्स जो हैं आप मेंटेन कर सकें और इसको फॉलो कर सकें. DGISPR जो है मेजर जनरल बाबर इफ्तखार, इसकी थोड़ी सी खबर माजिद भाई ने आपको बताई है, मैं थोड़ा सा सिनेरियो बता दूं. एक असल में वो टीवी का इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें कि माजिद भाई वो बोल रहे थे कि अगर जो मुशर्रफ साहब है वो आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया था बहुत शदीद बीमार हैं और दुबई के अंदर रह रहे हैं और इनको जो है एमीलॉयडिटिस है, ये नर्व्स के ऊपर जो है ये बीमारी और ये जो आपकी जैसे अल्जाइमर हो जाता है ना, आप भूलना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर जो है 78 इयर्स जो है मुशर्रफ साहब की इस वक्त उम्र है और वहां पे दुबई में इलाज करा रहे हैं. तो ये प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा जी हमने उनकी फैमिली को कॉन्टैक्ट किया और अगर वो आना चाहते हैं पाकिस्तान तो वो आ सकते हैं, यहां पे बिल्कुल वो आ सकते हैं. अच्छा, ये इसका सिनेरियो क्यों है, आज इनसे ये सवाल क्यों किया गया और इन्होंने ये क्यों कहा कि कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा था जी कि ये जो मुशरफ साहब के वापस आने के ऊपर जो कोई भी हर्डल्स नहीं है, और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो जब इन्होंने ये कहा तो इनसे पूछा गया, तो इन्होंने कहा जी कि हाँ हमने भी कॉन्टैक्ट किया उनकी फैमिली को और वो बिल्कुल आ सकते हैं। सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं जी मुराद अली शाह साहब, उन्होंने आज अपना बजट पेश किया। कल हमने आपको बताया था कि पंजाब ने और केपी ने किया था, तो आज इन्होंने सिंध ने जो है अपना बजट पेश किया है, वर्थ 1.71 ट्रिलियन रुपीज फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23। और इसमें उन्होंने कहा जी ये बहुत ही प्रो पुअर और टैक्स लेस जो है ये बजट है। इसके अंदर उन्होंने कहा जी स्पेशल प्रोग्राम्स हम हार्ड हिट एरियाज को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसको हम सपोर्ट देंगे, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर हम खर्चा करेंगे, और जो है टैक्सेस को बिल्कुल एक तो बढ़ाया भी नहीं है और कम करने की कोशिश करेंगे। ये जो कॉटन के ऊपर फीस थी, प्रोफेशनल टैक्सेस थे, एंटरटेनमेंट ड्यूटीज थी, इनको भी हम खत्म करेंगे, और जो गरीब लोग हैं उनको हम रिलीफ पैकेज देंगे, उसके लिए हमने पैसे रखे हैं 26.85 बिलियन रुपीज, और इसमें फूड सिक्योरिटी भी है, और इसके अलावा हम वीट के ऊपर सब्सिडीज देंगे एट द ट्यून ऑफ 23.324 बिलियन रुपीज। तो वो कहते हैं जी ये बहुत ही प्रो पुअर हमारा जो है बजट है, तो इसमें किसी को गरीब को जो है वो नहीं तकलीफ होगी। आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत का दिन था, क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसके ऊपर टेरर फाइनेंसिंग के बहुत सारे केसेस थे वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर, वो इसके ऊपर से हटा दिए गए हैं। तो एज अ रिजल्ट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज वन दिस टेरर फाइनेंसिंग केस। प्लेंटिफ थे हैरल्ड ब्राउन सीनियर, इन्होंने अपनी जो केस है एनबीपी के खिलाफ वो वापस ले ली है। इन्होंने कहा था, एक्यूजेशंस लगाए थे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे कि ये फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ यूएस मिलिट्री बेस ऑफिशियल्स इन अफगानिस्तान, और उसके अंदर क्योंकि 9 यूएस ऑफिशियल्स जो थे, सोल्जर्स जो थे, वो मर गए थे, लेकिन उसके अंदर कोई पाकिस्तान के किसी बैंक का कोई नहीं था। बहरहाल बना दिया जाता है ना जी, व्हेन यू कांट मेक इट यू फेक इट, ये हमारे जो है अमरीका वाले भाई जो है उनका ये मंत्र है ना। तो बहरहाल जी इनको अगर इनके ऊपर ये लग जाते सैंक्शंस एनबीबी के ऊपर, तो पाकिस्तान ऑलरेडी सिंक कर रहा है, बिल्कुल सिंक कर जाता, इसलिए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनको जो है इनको वो देना पड़ता, हर जाना देना पड़ता इसके लिए। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो कहां से फिर आते भाई, तो वो बैंक बैठ जाता, बैंक तो बैंकरप्ट ही हो जाता, मुल्क में से भी अगर इतना पैसा निकलता तो वो भी हो जाता। तो ये आज उनके लिए बहुत बड़ी वो है, और इसको टीम को लीड कर रहे थे अहमद इरफान साहब, और ये वही टीम है जिसने कि बहुत अच्छा काम किया है कुड़की और रेकोडेक पीआईए और तवारकी जो केसेस हैं उसमें। और अगर ये हो जाता एक और भी जिस तरफ हम इशारा कर दें, तो एफएटीएफ की जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें भी पाकिस्तान की बहुत बैशिंग होती। लेकिन जैसे कि फियाज भाई ने कल अनाउंसमेंट की थी कि अब पाकिस्तान को रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे इमरान खान को साइड पे लगाने का, तो ये था, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज कॉल्ड सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर, ठीक है जी। तो ये पहला उनको इनाम पाकिस्तान को दिया, तो लगता है कि एफएटीएफ में भी कुछ चीजें उनके लिए नरम की जाएंगी। आज जनाब ये एक मेजर स्टोरी है जो हम आपके साथ करने लगे हैं, एंड दिस हैज अपीयर्ड इन टेलीग्राफ न्यूजीलैंड। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे आरिफ नकवी साहब, जो कि चलाते थे अबराज कैपिटल फ्रॉम दुबई। हिज वर्थ वॉज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड ऑल ऑफ अ सडन जस्ट लाइक द बीसीसीआई बैंक, इनके बारे में खबर आई कि ये इनकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में, गलत तरीके से पैसा कमाने में, और उसके अंदर जो हैं ये शामिल हैं। जो नकवी साहब हैं, मेरी भी उनके साथ दुबई के अंदर जो है एक मुलाकात है छोटी सी, तो बहुत ये आउटस्टैंडिंग ये कंपनी चलाते थे। यानी आप सोचें कि ये इसका लेवल क्या था कि ये बिल गेट्स को और जो है बराक ओबामा को और जॉन कैरी साहब तक को ये इन्होंने कन्विंस किया था कि देर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन द इमर्जिंग मार्केट्स, और उसके अंदर प्राइवेट एक्विटी जो है हमको लगाने की जरूरत है। 2018 में ये मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी प्राइवेट एक्विटी कंपनी जो थी अबराज कैपिटल जो थी बन गई थी, और दिस was one of the world's top 20 equity companies.
Wow.
One of the top 20. और इनका नंबर शायद 18 या 19 था, और इनके जो एसेट्स थे दे वर एट द ट्यून ऑफ 14 बिलियन यूएस डॉलर्स, एंड दे वर ऑल ओवर स्प्रेड इन अफ्रीका, एशिया, लैटिन अफ्रीका, तुर्की, मिडल ईस्ट, और ये जो थे करते थे इन्वेस्टमेंट्स जो इनके अंदर शामिल थी वो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन तक को थी, जिसके के ऊपर फिर बेसिकली सस्पिशन इनका शुरू हुआ था कि आपने यूएस इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड किया है और इनके ऊपर एक जो है वो प्रोसीडिंग्स बिठाई गई थी। ये वही आदमी है ये जो है आरिफ नकवी साहब, जिन्होंने कहा था ये जो कराची इलेक्ट्रिक को कि तुम कराची की इलेक्ट्रिसिटी के ये जो है कारोबार जो है हमें दे दो, हम वी विल एंश्योर के एक दिन भी एक घंटा भी बिजली जो है वो नहीं रुकेगी कराची के अंदर, वी विल मैनेज दिस। तो वो जो केएससी
कोई लोड शेडिंग नहीं,
कोई लोड शेडिंग नहीं, कुछ नहीं कराची इलेक्ट्रिक के अंदर। बहरहाल जी वो डील चली नहीं आगे। तो वो अच्छा, इसके ऊपर टेलीग्राफ न्यूजीलैंड ने आज एक स्टोरी की है और ये स्टोरी वही है कि जो चौधरियों के गांव में एक बेचारे मजेरे ने सर उठाने की कोशिश की, एग्जैक्टली द सेम केस जैसे बीसीसीआई को दुनिया से खत्म किया गया। This also was exactly the same classic case के एक आदमी जो मुसलमान था, पाकिस्तानी था, because he did not change his passport, he was always he held the पाकिस्तानी passport, उसको फिर दीवार के साथ कैसे लगाया गया और उसके खिलाफ जो है। तो ये जो है ये जो रिपोर्टर है ये टेलीग्राफ न्यूजीलैंड का, ये कहता जी कि मैं इसको मिलने के लिए गया इंग्लैंड के अंदर और ये अभी जो है इसने अपीयर होना है यूएस के अंदर, क्योंकि यूएस कोर्ट में ऑलरेडी इसको 125 years की सजा सुनाई गई है। हाँ जी, तो वो कहता है जी मैं इससे मिलने के लिए गया क्योंकि ये बेल के की जो इसकी जो वो सारी हैं रिक्वायरमेंट्स उसमें सिर्फ इसको दिन की 2 घंटे की बेल मिलती है और इसको जो है बेल नहीं मिलती है। तो वो कहता है जी मैं इसके पास गया और मैंने कहा जी इसको कहा गया कि ऑडिटर्स जो हैं, इनके बारे में कहा गया था कि ऑडिटर्स जो तुम्हारे हैं 400 मिलियन का शॉर्टफॉल जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कंपनी से निकाल रहे हैं, दूसरे में डाल रहे हैं, दूसरे में डाल रहे हैं, तीसरे में डाल रहे हैं। वो कहते हैं जी कि एक ऐसा आदमी जिन्होंने इन बड़े लोगों को जैसे कि बिल गेट्स, ओबामा और जॉन कैरी तक को जो है वो सीख दी हुए कि आपने इमर्जिंग मार्केट्स में कैसे काम करना है वो कैसे। तो वो कहते हैं जी हम जब इनके पास गए तो इनको अगर आप, वो कहते हैं जी अगर आप गूगल करें तो इसके बारे में बड़ी आपको फैंसी और सेंसेशनलाइज किस्म की हेडिंग्स मिलेंगी। तो कहते हैं मुझे उन हेडिंग्स ने बड़ा इंट्रीग किया तो मैंने कहा इस आदमी को तो लेना चाहिए। वो कहता है जी जब आप गूगल खोलते हैं ना और आप आरिफ नकवी लिखते हैं तो उसमें आता है फाइनेंशियल फेरी टेल हाउ वन मैन फूल्ड ग्लोबल एलीट, द गार्डियन के अंदर ये थी, ही कन्विंस अलीट ही इन्वेंटेड फॉर इन्वेस्टेड फॉर गुड देन द मनी वैनिश्ड, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया। हाउ अ पाकिस्तानी कॉन मैन रॉब्ड 100 मिलियन यूएस डॉलर्स फ्रॉम बिल गेट्स, ये न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर आया। तो वो कहते हैं जी कि ये सारी जब मैंने हेडलाइंस पढ़ी तो मैंने कहा आई विल गो और मैं इजाजत दूंगा और मैं इसको मीटिंग करूंगा और मैं इससे मिलूंगा। अच्छा, कहता है उससे पहले वॉल स्ट्रीट के दो, वॉल स्ट्रीट जर्नल के दो रिपोर्टर्स थे साइमन क्लार्क एंड विल लाउच, इन्होंने ना अपनी बुक लिखी थी द की मैन, उसके अंदर वो कहते हैं जी उसने बहुत सारे उन्होंने रेवलेशंस किए क्योंकि वो कहता है जी हो सकता है कि उनकी भी शायद इसके साथ मुलाकातें हुई और उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसके सामने लाए। उसमें मेन चीज जो बताने की थी, अभी हम और डिटेल्स आपको देंगे, कि ये था कि जो लोग शायद शामिल थे उन्होंने शायद कोई फाइनेंशियल हैंकी पैंकी की होगी क्योंकि वो सारे जो थे उनको भी 125 इयर्स की जो है सजा दी थी यूएस कोर्ट में। तो उन्होंने यूएस को ऑफिशियल्स को कहा कि हम जो हैं आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हमको इतनी ना दी जाए। ये जो जर्नलिस्ट है टेलीग्राफ न्यूजीलैंड का, ये कहता है कि इस तरह के और भी बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स यूरोप के अंदर होते हैं मगर 125 इयर्स की किसी को जेल में सजा नहीं दी जाती है। तो इसके साथ ऐसे क्यों किया गया? एंड देन व्हेन ही रेड ऑल दीज यू नो फ्लैशी हेडलाइंस ही थॉट दैट ही शुड मीट एंड फाइंड आउट द स्टोरी, सो ही फाउंड आउट द स्टोरी। अच्छा, अब क्या है? वो कहता है जी अब राज कैपिटल के बारे में कहा जाता है कि ये पूरे सिस्टम को जो है ये जी ये आरिफ नकवी चलाता था और बड़ा ही इसका जो है ये ड्रैकोनियन स्टाइल था शायद। और वो कहता है जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब मैंने लोगों से बात की उन्होंने कहा कि इंतहाई अच्छा आदमी है और अपने जो नीचे के लोग थे उनसे बहुत प्यार से करता था। वो कहता है जी आप यानी खुद सोचें कि जो लोएस्ट एम्प्लॉय, जो चीपेस्ट एम्प्लॉय था अबराज ग्रुप का, वो 120,000 यूएस डॉलर्स पर ईयर कमाता था, जो सबसे लो ग्रेड का था ऑफिशियल जो था इसके अबराज ग्रुप में। 400 एम्प्लॉयज थे। तो वो कहते हैं जी मैंने कि फिर ट्रेस करना शुरू किया जरा बंदे थ्रू बंदा, मुस्तफा अबुल वदूद अब्दुल वदूद, ये अबराज कैपिटल के एक्स मैनेजिंग पार्टनर थे और बड़ा फ्लैशी इनका दुबई के अंदर लाइफस्टाइल था, घर बड़े ह्यूज एंड ह्यूज पार्टीज जिसके के अंदर सेलिब्रिटीज और ये सारे ये बड़े बड़े जो है अलीट दुनिया की आती थी, एंड देन यॉट और यॉट्स के ऊपर इसने पार्टीज करनी, तो वहां पे दुनिया की बहुत बड़ी अलीट आती थी। तो वो अच्छा जी ये कहते हैं जी कि इसको सबसे पहले सिक्योरिटीज फ्रॉड चार्जेस के ऊपर पकड़ा, इसको जब पकड़ा तो जैसे पाकिस्तानियों का होता है ट्रेडिशनल, इसने यूएस ने जरा जब सख्ती की तो इसने पिशी कर दी उनके सामने, इसने कहा नहीं नहीं पायन मैनू छोड़ दियो, ये बड़ा खराब आदमी है, इसने फड़ो मैं तानू। तो जो आपको पता है कि जो कॉरपोरेट सीक्रेट्स भी होते हैं वो भी बहुत सारे इसने उनको ऐसे बताए कि वो सारे जो फैक्ट्स थे वो ट्विस्ट कर दिए गए। तो वो जी वो एक तो ये है, वो कहते हैं जी ये इसने सबसे पहले तो ये शुरू हुआ, वो कहते हैं कि ये वो आदमी था जिसको कि मेन मास्टरमाइंड समझा जाता था। और आपको पता है अमेरिका में इसको किस जेल में रखा था, इसको वदूद साहब को अमेरिका की उस जेल में रखा था जहां पे वो जो ड्रग डीलर एल चैपो था वो भी था। ही वॉज कंसिडर्ड सो डेंजरस, ठीक है जी। अच्छा उधर रखा, फिर ये कहते हैं जी कि ये मैंने सोचा कि कुछ और लोगों को भी पूछना चाहिए, कुछ और लोगों के बारे में भी पता करना चाहिए। एक और आदमी था वो कहते हैं एक्स अबराज मैनेजिंग पार्टनर था, सेव वत्ती वट पिल्लई, ये जो थे इनको भी 119 ईयर्स का जेल दिया गया है। और वो कहते हैं जी कि ये इन्होंने भी यही कहा कि भाई कोई इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई गलत काम नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था, लेकिन इसको भी पकड़ के जो है कहा कि नहीं तुम्हारी कंपनी ग्लोबल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, तुम लोग यानी इतना पैसा कैसे बना रहे हो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि ये जो था ये अपनी कंपनीज बेचनी इसने शुरू कर दिया था उस स्टेज के ऊपर। ही सोल्ड जो इसके शेयर थे उमानी इंश्योरेंस, कतारी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जॉर्डेनियन इंटरनेट कंपनी, यूएई वाटर ट्रीटमेंट, और इसके ऊपर इसने 81 मिलियन यूएस डॉलर आरिफ नकवी ने जनरेट किए थे। उस सिलसिले में इसको वट्टी पेट पिल्लई को पकड़ लिया और कहा जी कि ये पैसा सारा कहां से आ रहा था। तो ऑफ कोर्स ही डिडंट नो कि ये जो आरिफ नकवी है ये पैसा सारा कहां से जनरेट कर रहा है, ही डिडंट नो कि वो अपने शेयर्स जो है बेच रहा है। तो एज अ रिजल्ट जब उन्होंने इसको क्वेश्चनिंग की तो उन्होंने कहा जी तुझे भी हम जो है 115 ईयर्स के लिए जेल में डाल रहे हैं, विच मीन्स कि अगर तुम्हारे पास कोई रिप्लाईज ही नहीं है बिकॉज यू आर द मैनेजिंग पार्टनर, सो इफ यू डोंट नो देन हु नोस। तो ये ऐसे हुआ। उसके बाद जी वो कहते हैं जी कि हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की ये जो है फादी गंडूर लॉजिस्टिक्स जो हैं, इसका वो जो कंपनी थी एरामैक्स जो थी उसके अंदर अबराज कैपिटल का 232 मिलियन जो यूएस डॉलर है वो हुआ था इन्वेस्ट, और इसने उसको कई मिलियन डॉलर और बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ हिज गुड मैनेजमेंट स्किल्स एंड ऑल दैट। और उसमें भी जब इसने शेयर बेचे जो कि अब फिर टच कर रहे थे बहुत ज्यादा, कोई 200 मिलियन से ऊपर निकल गए थे, उसने फिर इसकी जो है वो क्योंकि वो देख रहे थे कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये कैसे इतना ग्रो कर रहा है, ये कर क्या रहा है कि इसका बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है। वो कहते हैं जी कि इसने 5 times ये जो इसने इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 15 मिलियन इन्वेस्ट किया था इसके अंदर एरामैक्स में, 5 times वो इसकी वो जो है वो वेल्थ बढ़ गई। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि इतना जबरदस्त वो कंपनी काम कर रही थी एरामैक्स की कि एरामैक्स के एम्प्लॉयज जो हैं उनके अंदर 14 मिलियन यूएस डॉलर्स बांटे गए। हमें कितना चाहिए? 1 मिलियन डॉलर कनेडियन। अच्छा जी उसके बाद वो कहता है जी इन्होंने इन्वेस्टर्स को 600 मिलियन के दिए वो डिविडेंड्स दिए। फिर क्या हुआ ये जरा थोड़ा सा एम्बिशियस हो गया जो है आरिफ नकवी, इसने कहा कि अब मुझे कुछ यूरोप की कंपनियों में करना चाहिए। तो ये जो कंपनी थी EFZ हर्मीज, आपको पता है बहुत बड़ा फैशन ब्रांड है, उसके अंदर जो है इसने 505 मिलियन डॉलर से खरीदे शेयर्स, उसमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किए और फिर 1.1 बिलियन यूएस डॉलर के सेल कर दिए। तो इसी तरह उसने जो है टर्किश एक कंपनी थी वहां पे कुछ थे सिंगापुर में मलेशिया में कई कई मिलियन, 100 मिलियन का लिया, 300 मिलियन का बेच दिया, 4 का लिया, 700-800 मिलियन का बेच दिया, ये सारी चीजें चलती रही। अच्छा इसमें क्या हुआ फिर कि ये अब लोगों की नजरों में आना शुरू हो गया। नजरों में इसलिए आया कि यूरोप की बहुत सारी जो कंपनी और लोग थे ना वो आरिफ नकवी के अंदर इंटरेस्टेड होना शुरू हो गए, क्योंकि वैसे भी वे मिल तो रहा था ये जॉन कैरी और ओबामा टाइप के लोगों के साथ। उन्होंने कहा इस आदमी के पास क्या मैजिक है, वी नीड टू नो कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा कौन सा इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर विजिट पैदा हो गया है। यहां पर एक खालिद हवालदार का ये जिक्र करते हैं, ही इज द MD एंड फाउंडर ऑफ रिस्क एंड रेगुलेटरी एडवाइजरी फर्म एक्रेडिटस। उसने कहा जी कि ये जिस वक्त इसने ये सारा काम शुरू किया तो उस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारी यूएस की जो कंपनीज थी उन्होंने कहा इसको नुकसान पहुंचाने के लिए अलेजली कि हम तुम्हारे ये बाय आउट करेंगे। जब डील्स फाइनलाइज होनी शुरू हुई इन्होंने अनाउंसमेंट्स कर दी, क्योंकि ये सारी स्टॉक एक्सचेंज पे थी कंपनियां, वो जो मेजर बायर्स यूएस के थे वो सारे पीछे हट गए। एज अ रिजल्ट इसको बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया और मार्केट के अंदर बात फैल गई कि मे बी ये जो इतनी बड़ी यूएस की कंपनीज हैं ये जो पीछे हटी हैं इसका मतलब है कि इसके अंदर हैंकी पैंकी है। वरना इसका कहना है कि क्या वजह है, यानी कि जो राइटर है ये टेलीग्राफ न्यूजीलैंड का, वो कहता है वरना क्या वजह है कि इवन ओबामा की जो एक्स कॉमर्स सेक्रेटरी है पेनी फ्रिट्सकर वो तक उन यूएस बड़े इन्वेस्टर्स में शामिल थी जो कि इसकी कंपनी को, ये देखें ये ओबामा साहब की बड़ी ये फेवरेट समझी जाती थी पेनी फ्रिट्सकर, और ये भी अपॉर्चुनिटीज देख रही थी और ये भी अबराज ग्रुप के अंदर कुछ शेयर्स उसके खरीदना चाहती थी। तो वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट की एक कंपनी में इतने बड़े लोगों का इंटरेस्ट क्यों था, इसलिए था क्योंकि बेइंतहा प्रॉफिटेबल कंपनी और बिजनेस वो चला रहा था। तो वो कहते हैं जी कि ये जो बुक है द की मैन जो ये उन्होंने लिखी है उसके वॉल स्ट्रीट जर्नल के लोगों ने, उन्होंने कहा जी कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये इसलिए थी वहां पे और इसलिए ये सब लोग जो है करना चाहते थे और अपने बिजनेसेस को अफ्रीका एशिया और लैटिन अमेरिका में बढ़ाना चाहते थे।
एक क्विक एक ब्रेक लेंगे इसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
ग्रिल इन द हार्ट मिसेस सागा में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। ग्रिल इन द हार्ट, खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
ग्रिल एंड चिक, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, squares, popcorn chicken salad, garlic bread, sweet dishes. Aapne pahunchna hai 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive Commercial Intersection, Grill and Chick, 905-456-0500. Grill and Chick.
गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसे कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दे, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम, 416-302-2522-302-2522।
जी साहब, वेलकम बैक अगेन। एंड 6:41 और लीजिए साहब 6:42 और 2 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। कैलेडन सब्जी फार्म की बात करें, चलो कैलेडन सब्जी फार्म, ये कहते हैं कि गार्डनिंग सीजन इज ऑलरेडी स्टार्टेड और अगर आपको बीज मींस के सीड्स चाहिए हो, चाहे वो करेले के हों, भिंडी, चप्पन कद्दू, टिंडा, हलवा कद्दू, रामतोरी, पालक के, इंडियन सरसों, धनिया, लहसुन वगैरह के बीज चाहिए हों आपको, तो भाई आप यहां से खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर प्याज के जो है पनीरी चाहिए हो आपको तो वो भी आपको मिलेगी यहां पर। आपको गार्डनिंग टूल्स जो हम पाकिस्तान हिंदुस्तान में यूज करते हैं ना, जैसे काही हुई, रंबा हुआ, पटली हुई है, ये सारी चीजें जो गार्डनिंग टूल्स जो पाकिस्तानी और इंडियन गार्डनिंग टूल्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। खास तौर से सॉयल, मेन्योर, पॉटिंग मिक्स, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपने कहां जाना है, कैलेडन सब्जी फार्म पर 12050 एयरपोर्ट रोड कैलेडन, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड के कॉर्नर पर, 9058409000। कैलन सब्जी फार्म का फोन नंबर है 9058409000 इनका फोन नंबर है। जी
जी, तो बस मजद भाई ये तो थी अबराज कैपिटल की स्टोरी, और हम मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत, एक साहब जो है मेरे जानने वालों में से उनको मैं लाना चाहती हूँ, अगर वो आ जाएं और मान जाएं तो बीसीसीआई की जो असल स्टोरी है ना माजिद भाई,
हाँ जी,
वो भी हम सामने लाना चाहेंगे लोगों के। तो कभी अल्लाह करे, मैं बड़ी दुआ करती हूँ वो मान जाएं और उनको हम सामने लेकर आएं और वो बात बताएं और बताएं कि कैसे किस तरह से सारी चीज को मैनिपुलेट किया गया और कैसे इल्जाम लगाए गए उनके ऊपर, विच वॉज नॉट ट्रू एट ऑल बिकॉज ही वॉज सिटिंग राइट इन द हार्ट ऑफ बीसीसीआई उस वक्त जो थे। बहरहाल कुछ बातें जो हैं वो हम छोड़ देते हैं उनके लिए। अच्छा जी, हमारे जो जस्टिन वीवर साहब हैं, आज उन्होंने एक अपडेट दी है कि उनकी वो जो बीमारी है जिसके कि उनको फेस का पैरालिसिस हो जाता है उसके ऊपर क्या जो है वो है चल रहा है, उनका अपडेट्स क्या है। वो कहते हैं कि ये इन्होंने बताया है कि जी मैं बड़ा कैथलिक हूं और मैं अल्लाह पे बड़ा बिलीव करता हूं, तो वो कहते हैं जी मेरे साथ जो भी कंडीशन है मैं अब बेटर फील कर रहा हूं, लेकिन जो भी मुझे डिस्कम्फर्ट है वो अल्लाह जानता है उसके बारे में, ही नोज एंड इस तरह। तो लोगों को बड़ी हैरत होती है कि एक सिंगर जो है वो इस तरह उसका बड़ा, क्योंकि ज्यादातर तो ये लोग रिलीजन वगैरह पे बिलीव ही नहीं करते, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं जी मैं आई नो ही नोज बेस्ट और इस तरह करके। तो बहरहाल वो उसके जो आज फैंस हैं वो जरा खुश हुए हैं कि एटलीस्ट उसने कुछ अपडेट दिया कि ही इज ओके, वो कहता है जी आई एम गेटिंग बेटर। आज जनाब थी सेकंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, और आज सारी इंडस्ट्री ने उसको याद किया और कहा कि बहुत ही अच्छा बंदा था, और आपको पता ही है कि ये वन ऑफ दोज था जिसने के अपना जिसका के कोई गॉड फादर नहीं था बॉलीवुड के अंदर, एंड ही रियली मेड इट बिग इन द इंडस्ट्री। ही स्टार्टेड प्लेइंग स्मॉल रोल्स इन टीवी और फिर वहां से ये फिल्म में आया था। ही वाज फाउंड डेड एट द एज ऑफ 34 इन हिज अपार्टमेंट ऑन June 14, 2020, और जो है ये बड़ा ही इसको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज फिर आई थी, आपको हमने बताया ही था यहां पे कि ड्रग ओवरडोज है या उसकी गर्लफ्रेंड अलेजली शामिल है या क्या। तो पटना में ये रहते थे, फिर ये स्टडीज के लिए दिल्ली आ गया था, एंड देन यू नो फ्रॉम देयर। तो एक दफा इनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में, जो अब आज सामने लाया गया है एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो सुना है बॉलीवुड के अंदर बड़े कैंप्स हैं, तो आप किसके साथ, आपकी लॉबिंग किसके साथ है? या कहता है अच्छा मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद मैं इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं हूं कि किसी ने मुझे बताया ही नहीं है कि यहां पे कैंप्स हैं बॉलीवुड में। वरना लोगों ने आज इनको बड़ा याद किया है। किरण खेर साहिबा जो हैं जी वो आज 70 ईयर्स की हो गई हैं, तो अपनी 70th बर्थडे उन्होंने अपने बेटे के साथ मनाई और उसकी कुछ तस्वीरें इन्होंने डाली हुई थी। इनके बेटे भी आपको पता ही है सिकंदर खेर एक्टर हैं, तो मुंबई में ये अपनी मां को जो है वो लेकर गए एक लंच के लिए, तो वहां पे इनको आप देख रहे हैं कि इन्होंने ग्लासेस से पहने हुए हैं बड़े सारे, और इनके साथ जो बेटे हैं उन्होंने ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई है, और उसने अपनी माँ के गिर्द जो है वो अपने आर्म्स किए हुए हैं। तो किरण खेर ने आज इसको अनाउंस किया और कहा कि ब्लेसिंग्स, लव एंड वार्म्थ, फोल्डेड हैंड्स, और फिर बहुत सारे हार्ट इमोजीज जो हैं वो अपने जो है जहां पे ये शेयर कर रही थी सारी अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे, वहां पे इन्होंने छोड़े। अक्षय कुमार साहब की फिल्म जी सम्राट पृथ्वीराज बुरी तरह से फेल हो गई है। आपको पता ही है कि इस मूवी के अंदर 200 करोड़ लगाए गए थे और इसने सिर्फ जो है एक हफ्ते में 65 करोड़ जो है वो कमाए हैं, और ये इसके अंदर दिखाई गई थी पृथ्वीराज की फाइट्स जो है मोहम्मद गोरी के साथ। तो यहां पे आज जो इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने कहा जी कि मुझे पहले ही इसने कहा था अक्षय कुमार ने कि अगर इस तरह की जो पीरियड मूवीज हैं ये, क्योंकि ये 12th century पे बनी हुई है तो ये नहीं चलेंगी, तो मैं फिर से कमर्शियल मूवीज राउडी राठौर और हाउसफुल की तरफ जाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजनेस करती हैं। तो वैसे मैं तो अब नहीं देखती हूं बहुत ज्यादा इंडियन फिल्में, लेकिन मैंने ये देखी थी सम्राट पृथ्वीराज, जैसे कि पीछे भी इन्होंने मुस्लिम राजों के ऊपर मूवीज बनाई थी, तो भाई वो तो किसी फ्लूक से चल गई, शायद उसमें एक्टर्स जो थे वो आपके बड़े फेवरेट थे। ये इतनी कोई बकवास फिल्म बनाई हुई है, और हमेशा जो मुस्लिम राजा है उसको बताया हुआ है वो बड़ा जंगली है, वो बड़ा पागल है, वो बड़ा स्टूपिड है, और बिल्कुल मंगोल्स की तरह पागल हुआ हुआ है वो ऐसे, और वो जो है उसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। तो भाई साहब इस तरह की फिल्में कब तक बनाओगे और कब तक झूठ बोलोगे मुस्लिम राजों के बारे में, ऐसे नहीं थे मुस्लिम राजे, यू नो। तो जी इसमें भी मोहम्मद गोरी को बड़ा ही जो है वो, एक तो इसकी शक्ल जिस आदमी को लिया हुआ है बड़ा ही वो स्टूपिड सा लगता है शक्ल से ही, और ऊपर से जी उसको अपनी तो बुद्धि कुछ है नहीं, समझ तो उसको है नहीं, जो उसको एडवाइजर कह रहे हैं उसके ऊपर वो चल रहा है मोहम्मद गोरी, आप सोचें जरा है जी, उसको उसको ऐसे दिखाया हुआ है। और भाई साहब थोड़ी सी रिसर्च किया करो, और ये जो कुत्ते बिल्लियों की शक्ल के मुसलमान राजे दिखाते हो ना वो ना दिखाया करो, देवर ऑल फॉर योर सेक, देवर ऑल सेल्जुक टर्क्स। तो ये सेल्जुक टर्क्स जो है ना, जरा टर्क्स की शक्लें देख लें आप, कितने वो हसीन हैं तुर्की वाले जो हैं, तो ये बड़े खूबसूरत थे ये सारे। तो सही बनाया, तो ये जी चली नहीं है, बिल्कुल बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से ये फ्लॉप कर गई है। एंड जनाब सरीना विलियम्स जो है वो अब वापस आ रही हैं एक साल के बाद विमिल्डन में, और उनको जो है इन अ वाइल्ड कार्ड वापस लेकर आया जा रहा है। और ये जो है शी सेड दैट शी विल बी रिटर्निंग टू ग्लैम स्लैम एक्शन एंड शी विल बी पार्ट ऑफ द विमिल्डन विच बिगिंस ऑन जून 27। तो उसमें फिर आप जो है इनका एक्शन कभी हम करेंगे, वैसे सरीना विलियम्स और इसकी बहन जो है उसके ऊपर भी कभी स्टोरी करेंगे, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनके बाप की स्ट्रगल्स एंड हाउ दे केम इन सच अ ह्यूज गेम एंड ऑल दैट। एंड जनाब एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज है, और इसके मुताबिक यूएस टेनिस एसोसिएशन के जो सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ल्यू शेर, उन्होंने कहा जी कि हम एक गवर्नमेंट की जो सजा है वो उसके एथलीट्स को नहीं दे सकते, एंड एज अ रिजल्ट यूएस टेनिस ओपन जो हो रहा है उसके अंदर रशियन और बेलारूसियन जो एथलीट्स हैं वो अब पार्टिसिपेट कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये एथलीट्स जो हैं ये कोई भी अपने मुल्क का झंडा नहीं उठाएंगे, अंडर न्यूट्रल फ्लैग जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हम एथलीट्स को इनके मुल्क की जो है वो सजा नहीं दे सकते हैं। इससे पहले आपको पता है बहुत सारे जो इवेंट्स हुए थे उसमें से निकाल दिया गया था इनको, और बहुत बड़े बड़े जो स्टार्स थे उन्होंने बहुत इसका बुरा मनाया था।
विंबल्डन इज द बिगेस्ट वन,
बिगेस्ट वन, हाँ जी हाँ जी। तो आयन जनाब कल हम आपको बता रहे थे कि वर्ल्ड कप में कौन जाएगा कतर में, है जी कल जो था बड़ा वो मैच था, अगर आपने देखा हो मैच था, बड़ा थ्रिलिंग मैच था वैसे, ऑस्ट्रेलिया और पेरू का, तो उसके अंदर जी ऑस्ट्रेलिया जीत गया फिर से। तो अब ये जा रहे हैं कतर, इन्होंने पेरू को 5-4 से जो है इन शूट आउट्स वो किया, और इनका जो ऑस्ट्रेलियन सब्स्टिट्यूट गोलकीपर था एंड्रयू रेडमेयर, उसने बड़ी जबरदस्त काम किया, उसने जो लास्ट पेनल्टी थी उसको रोका, उसकी वजह से जो है, वरना ये बिल्कुल 0-0 पे चल रहे थे, और ये जो पेनल्टी शूट आउट्स एक्स्ट्रा टाइम में इनको दी गई तो उस पे फिर जो है ये जीते हैं। एंड एब्सोल्युटली जनाब आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट मुकेश अंबानी, आपको पता ही है एशिया के रिचेस्ट मैन है ये, इसने क्रिएट किया था वाईकॉम 18 जॉइंट वेंचर विद यूएस पैरामाउंट ग्लोबल और ऑस्ट्रेलिया मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक सन जेम्स के साथ, और अब इन्होंने आईपीएल के जो राइट्स हैं 2.6 बिलियन यूएस डॉलर्स के जो है इन्होंने बैक किए हैं। इसके अलावा स्टार इंडिया जो के विच इज ओन्ड बाय यूएस बेहमोथ डिज्नी, उनको भी जो है ये नेक्स्ट 5 आईपीएल सीजन के लिए मिली है इसकी राइट्स, इन्होंने रिटेन किए हैं, और ये दोनों डील्स जो हैं दे आर वर्थ 5.65 बिलियन यूएस डॉलर्स, बिकॉज आईपीएल इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेरी वेल एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट देयर। तो ये जनाब मुकेश अंबानी साहब और पैसे आ रहे हैं, मुकेश भाई के पास और पैसे आ रहे हैं, ऑलरेडी एशिया के रिचेस्ट मैन है, दुनिया के रिचेस्ट मैन में भी इनकी
That's what happens.
पैसे को पैसा खींचता है, हमें $1 million नहीं मिल रहा है और सानू भी कोई दे दो जी, साड़ी भी कोई लॉटरी कर दो ना जी, ना साड़ी नहीं करनी लॉटरी,
वो भी 1 million कैनेडियन आपने कहा,
हाँ जी सिर्फ देखो कितने थोड़े पैसे हैं,
$150 अमेरिकन
हाँ? जिस तरह से हमारी इकोनॉमी काम कर रही है ना, ये 150 अमेरिकन डॉलर पे आ जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर जिस दिन ये ऐसा हुआ ना मैं जरा किरास करके जाया करूंगी वीकेंड पे, वहां पे 150 अमेरिकन डॉलर कमाए और आगे फिर
हाँ जी,
अपनी मॉर्गेज दे दी,
मॉर्गेज दे
दी, मॉर्गेज मोर्टगेज नहीं नहीं मोर्टगेज।
शाहजी जी आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मगर फिर भी हम 5 मिनट के लिए अपनी लाइंस खोलेंगे, अगर आपने कोई बात कोई तबसरा करना हो 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है, आपने न्यूज में से किसी पे भी कुछ तबसरा करना हो, कुछ बात करनी हो, कुछ सवाल करना हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव अस अ कॉल। कोई स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम में फौरी तौर पर वापस आएंगे, 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है। चलिए पहले कॉल आइए, पहले कॉल को ले लें, उसके बाद एक नहीं दो नहीं तीन कॉल्स हैं हमारे पास, एक मिनट में तमाम को लूंगा अभी। और पहली कॉल जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, कौन बात कर रहे हैं?
जी मैं सईद बात कर रहा हूँ।
जी सईद भाई फरमाइए।
हाँ जी, ये हमारी जो ये है पार्टी है उनको पैसे बहुत चाहिए, तो उनको बोलो कि पाकिस्तान की सियासत में चली जाए, वहां जाएंगे तो अरबों रुपए आ जाएंगे, अरबों डॉलर आ जाएंगे।
ओह मैंने तो सोचा ही नहीं इसके बारे में।
ये देखे ना,
ये
देखे, इसीलिए मैं अपने
मैंने खोली है आपने
इसे, मैं इसलिए कॉलर्स को अपना आई लव देम, दे गिव यू सच अ गुड एडवाइस।
ओ माजद भाई के भाई साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान
के अंदर चले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं जान लगी हूँ।
बट ठीक है जी,
तुम्हें कल तो देख रहे थे।
सही में बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम
जी सर,
क्या है सर, ठीक ठाक
अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं?
बात कर रहा हूँ, और भाई ने फोन किया था, उसने तो अच्छा मशवरा दिया, मैं भी ये देने वाला था, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। शायद तो मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान में जाके आप इंकर बन जाए तो आपको लिफाफे भी मिलेंगे, और एक बिलियन डॉलर क्या दो बिलियन डॉलर बन जाएगा।
आप यार, आप भाई, आप खाम खा यार, हमारी अच्छी खासी एंकर को यहाँ से भिजवा
रहे हैं। ना ना ना, ना, ना हम जा रहे हैं।
वाइस में एक शर्त भी है।
हाँ
और शायद जी ने फिर मुझे भी थोड़ा सा देने, मैंने भी मॉर्गेज खत्म करवाना है।
ठीक है जी, फिर मैं दो बड़े बड़े लिफाफे वहाँ से पाकिस्तान से लेके आऊंगी, एक आपके लिए एक अपने लिए।
सही है सही है,
बहुत मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन बात कर रहे हैं सर?
जी मैं हिदायत बोल रहा हूँ, बट मेरा सवाल आपसे मैंने पूछना है कि पाकिस्तान में मीडिया वाले या पॉलिटिशियन सरेआम झूठ बोलते हैं और बात बात पे उनको शर्मिंदगी।
सही बात, उनको शर्मिंदगी नहीं,
नहीं नहीं सर, नहीं, उनको बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी आप थिक स्किन्ड हो जाएं तो आप जितना मर्जी बेचक झूठ बोलें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
झूठ झूठ नहीं रहता,
नहीं झूठ झूठ नहीं रहता ना, वो ये जो झूठ बोलने वाले होते हैं इनका एक मंत्र होता है, वो कहते हैं झूठ इतनी दफा बोलो और इतनी दफा ऐसे बोलो कि लोग कन्विंस हो जाएं कि नहीं सच यही होगा। हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है।
डेफिनेशन ऑफ प्रोपेगेंडा इज द सेम,
यू
कीप रिपीटिंग द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन, people think it's true.
Yeah, that's right.
Sab ek aur call leta hu ji. Hello, assalam alaikum. Ji ji, kaun baat kar rahe hain?
Hello.
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 Ji, assalam alaikum ji.
Wa alaikum assalam. Kaun baat kar rahe hain sir?
Ji, main Fayaz Ali Barkum kar raha hu ji.
Ji.
Ye tanqeed kar sakta hu ye madam jo hai Arfa Badi ki jo hai madam jo hai wo Bulbul unke pe tanqeed kar sakte hain hum?
किस पे करना है आपने?
आरफा बाजी की जी बुलबुल है,
आरफा बाजी की बुलबुल। अच्छा, ये पहला नाम सुना आपने। ओके फिर
उनसे सुना था मैंने।
अच्छा अच्छा, आपका चले कर ले
तरकीब करनी है।
हाँ जी
ठीक है जी, मतलब माइंड ना करे पहले वापसी। कल इन्होंने बड़ी बड़ी तारीफ की थी इंग्लिश की, मेरी इंग्लिश बुक की राइटिंग बहुत अच्छी है और स्पीकिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो मैं बैंक से जो है यहाँ पे आ गई हूँ, मैं जर्नलिस्ट बिजनेस है। लेकिन शाम में जब ये उर्दू में जब खबरें पढ़ती हैं, वो देख के पढ़ती है उर्दू में खबरें सारी, क्या इंग्लिश ही पढ़ती है? देख
नहीं, वो इंग्लिश में लिखी होती हैं
मेरी खबरें सारी इंग्लिश में। ये देखें जरा, ये मैं आपको दिखाती हूँ,
खबरें का लफ्ज कौन सा?
ये
खबरें का लफ्ज मैंने आके भी सुना, खबरें
ये मैंने इंग्लिश में लिखी होती है, मुझे
खबरें जो है इंग्लिश में लिखी होती है और ये आपको ट्रांसलेट कर करके
बताती
हूँ। हाँ, उर्दू में सुनाती है।
दे आर इन इंग्लिश, दे आर ऑल इन इंग्लिश।
जैसे भी आपने अभी आपने कहा खबरें, तो खबरें तो सुना है, खबरें के बिना सुना हमने।
सर ये साड़ी अपनी डिक्शनरी है, असि अपनी डिक्शनरी खुद लिखी है, तुसी सुनिया नहीं कनाले जी ते कनाई।
फयाज भाई, अंग्रेजों ने दो साल आके ढाई सौ साल आके हमारे माशरे को खराब किया।
हाँ।
तो हम कहते हैं कि हम किस तरीके से
उनसे बदला लें, गलत अंग्रेजी बोल के।
हाँ जी, उनकी भी इंग्लिश खराब कर दीजिए हमने।
सही कह रही। खुश रहिए, खुश रहिए,
बहुत शुक्रिया जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम अस्सलाम माजिद भाई, शादिया जी, कैसे हैं आप?
कौन बात कर रहे हैं?
मेरा नाम फरहान है
जी, फरहान,
और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं आप लोगों का ये प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ।
बहुत मेहरबानी सर,
अच्छा लगता है आप लोगों का देखना, और मुझे यकीन मानिए खबरों से नफरत होने लगी थी, लेकिन आप लोगों का स्टाइल जो है खबरों का देने का, ओहो, ये अभी जो आप डिक्शनरी की जो आपने बात करी, जबरदस्त।
देखो बहन, आप दिल्ली के, हम जो है इधर पाकिस्तान के हैं, हमारे पे बड़े जुल्म किए अंग्रेजों ने, हम अब उनकी जुबान के ऊपर जुल्म निकाल रहे हैं।
एक यूनिक स्टाइल आपका लाजवाब है, आपकी खबरें सुनने में। मैं ड्राइव करता हूँ ऑफिस से, जानबूझ के निकलता हूँ उसी वक्त,
और अपने रेडियो पे सुनने के बजाय अपने फोन पे सुनता हूँ, घर पे आके बीवी को भी सुनवाता हूँ आपके।
वाह जी वाह, क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू,
बहुत मेहरबानी सर, बड़ी भाई, बहुत शुक्रिया,
आपको खुश रखे और और इजाफा करे।
आमीन सुम्मा आमीन,
हमारी नॉलेज में और इजाफा करे सर
जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम
जी। अस्सलाम वालेकुम,
कौन बात कर रहे हैं सर?
जी मैं इरशाद बोल रहा हूँ जी, माजिद साहब
जी। इरशाद भाई,
बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बस आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छा जा रहा है। बस वो मशवरा दिया था अगर मिलियन डॉलर वगैरह जरूरत है
जी,
अपना शाजिया जी को और सियासत में हिस्सा लें तो कहीं पी टी आई में ना ज्वाइन कर लें, वहां तो एक पहली चाय और दो बिस्किट मिलते हैं
बिल्कुल नहीं करना है जी।
ये आपने मिलियन डॉलर का आपने जवाब दिया सर,
जवाब दिया मजद भाई के। भाई साहब मैं आपके इस जवाब से बहुत खुश हूँ।
हम लोग तो पीटीआई, हम तो पीटीआई में जाके जाने वाले थे।
पीटीआई में कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे
नहीं
है। ओ जी जिसका हेड जो है चाय का एक कप नहीं पिलाता उसकी पार्टी में जाके हमने क्या करना है जी।
यही तो इरशाद भाई ने कहा ना, वहाँ सिर्फ चाय मिलेगी,
चाय मिलेगी, कुछ नहीं, नहीं, नहीं चाहिए।
तो बहुत बहुत शुक्रिया
आपका, टिकट के पैसे भी पूरे
नहीं। आहो, आहो, अपनी लंगोट भी बेच आओगे उसमें नहीं
जाएगी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये तीसरा हेलो है, उसके बाद मैं दूसरी लाइन ले लूंगा। हेलो,
वालेकुम हेलो,
वालेकुम हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम
जी। अस्सलाम,
कौन बात कर रहे हैं सर? वालेकुम सलाम
जी, महमूद बात कर रहा हूँ, क्या हाल आपका जी? ठीक है
महमूद भाई, कैसे हो?
जी ठीक है जी। शमीना साहबा से बात कर रही थी कि जब इलेक्शन का इन्होंने उस दिन बड़ा हार्शर पहन के आई थी, मैं क्या तस्वीर भी आपने पकड़ ली थी, पीर ही बन जाती